प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के इस 18 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप सबसे कहा था, अब मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बायोडायवर्सिटी विषय के बारे में बात की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सिलेबस उठाकर देखिए, सिलेबस में बायोडायवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन वो क्या है, कैसे है, उसके तहत क्या क्या बातें आनी है, ये बात नहीं बताई गई है। और ये केवल बायोडायवर्सिटी के साथ ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे विषयों के साथ है। और ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वह अपने सिलेबस को सही तरीके से समझ पाए। कोई बात नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बायोडायवर्सिटी मतलब सभी विषयों के साथ मैंने ये किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन कोर्स का जो आधार है, वो आधार तो यही है ना कि हम पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से समझें और समझने के बाद उस पाठ्यक्रम के अनुसार आप तक लेक्चर पहुंचाएं। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने जान लिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके काम के हैं, और उसी आधार पर मैं आपसे बातें करूंगा। लेकिन सीधी सी बात है कि लेक्चर की सीमा है, केवल 10 दिनों तक हम इस तरीके से बातें करेंगे, जिसमें से एक दिन ऑलरेडी हो चुका है। एक बात मैं शुरुआत में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि खासकर जैसे कि हम पर्यावरण के बारे में बातें कर रहे हैं, या जो इस तरह के विषय होते हैं जो जिन्हें आप बहुत सामान्य नहीं मान सकते। देखिए, जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा सा एक सामान्य सा विषय है, लेकिन जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं या जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो यह सामान्य सा विषय नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं विज्ञान शामिल हो जाता है। पर देखिए, जो जब हम अपने पर्यावरण टॉपिक की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, तो उसके तीन भाग हैं स्पष्ट रूप से। एक तो है पर्यावरण प्रदूषण, जिसके बारे में आप खूब पढ़ते हैं, सुनते भी आ रहे हैं और काफी कुछ जानते भी हैं। इसका जो दूसरा पक्ष है वो बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी का जो बेस है वो काफी कुछ साइंस का है, ज्योग्राफी का और साइंस का बेस है। और तीसरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के भी बेस में काफी कुछ साइंस है। तो जब साइंस के विषय हों तो वो आपको एक अलग तरीके की चुनौती देते हैं। और वो चुनौती क्या होती है? चुनौती ये होती है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो उसमें कभी कभी बीच में, या कह लीजिए कि अक्सर ही, कुछ शब्द आ जाते हैं। और ऐसे शब्द आते हैं जिनके सामान्य रूप में तो अर्थ आपको मालूम है, लेकिन स्पेसिफिक रूप में उसके अर्थ मालूम नहीं है। सामान्य रूप में बोलचाल में आप इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रूप में नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए, मैं आपको इकोनॉमिक्स की ही एक बहुत अच्छी बात मुझे अभी याद आ गई। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू शब्द है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में राष्ट्रीय शब्द है। बाकी तो तीनों शब्द, बाकी दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, आप याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, उसमें क्या है, परिभाषा रख लीजिए। लेकिन अगर आप पकड़ बनाना चाहते हैं विषय पर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये घरेलू और ये राष्ट्रीय, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है, क्योंकि ये डिफाइन वर्ड है। घरेलू घर का, राष्ट्रीय राष्ट्र का, सामान्य तौर पर तो हम इसे चलता कर देते हैं, ठीक है मालूम है हमें, लेकिन वो नहीं है। अगर आप इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, जो बकायदे पारिभाषिक शब्द हैं, इनका इस्तेमाल अगर यहां किया गया है तो किसी विशेष संदर्भ में किया गया है। एक बार 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर आप इनके अर्थ को अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि अब आप राष्ट्रीय आय की गणना की जितनी भी बातें पढ़ते चले जा रहे हैं, वो सारी बातें आपको स्पष्ट होती चली जा रही हैं। और साथ ही साथ प्री एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न इनको लेकर के पूछे जाएंगे, आप उलझेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जानता है कि आप कहां उलझ सकते हैं। लेकिन केवल चूंकि आपने इसके इनके शब्दों के अर्थों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब आप नहीं उलझेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि यही बात बायोडायवर्सिटी टॉपिक के साथ भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसमें तो बहुत ही सामान्य सी बातें दी गई होती हैं, और सामान्य सी बातों को आप भी सामान्य तरीके से लेते हैं। जब वो सामान्य तरीके से लेते हैं तो जो न्यू बननी चाहिए वो गड़बड़ हो जाती है। आपको चाहिए कि आप हर बात को बहुत गंभीरता से लें, और उनके एक एक शब्दों के जो अर्थ होते हैं, जो वास्तविक अर्थ होते हैं, उन्हें आप समझें। जैसे बायोडाइवर्सिटी, आइए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, तो आप देखिए सीधी सी बात है कि भाई इस धरती पर जो विविधता है वो बायोडाइवर्सिटी है, और आप गलत भी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन पारिभाषिक रूप में ये क्या है? जब आप जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो उसका मतलब इनफैक्ट होता क्या है? इसमें कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं इसमें, वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जब हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे आ जाता है यार कि जो जीव जंतु हैं, फूल पौधे, पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब बायोडाइवर्सिटी है, बात खत्म हो जाती है, और पूरी तरह से आप सही भी हैं। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से मुझे लगता है कि तैयारी करने की यह पद्धति सही नहीं है, ये आधी अधूरी पद्धति है। तब फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो इनफैक्ट वह होता क्या है, उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है। क्योंकि जब आप वास्तविक परिभाषा को समझेंगे तब जो आपका दिमाग है वो विस्तार लेगा, विस्तृत होगा, एक्सपेंड करेगा। अदरवाइज तो जैव विविधता के बारे में आपने जहां से भी आपने पढ़ा है, सुना है, उस सुने और पढ़े हुए के हिसाब से एक इमेज बना रखी है कि ठीक है जैव विविधता ये है, तो आपका दिमाग उन्हीं इमेजेस को लेकर के आएगा। हो सकता है कि आपने सही भी बना रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सही होनी ही चाहिए, लेकिन पता लगा कि आपके दिमाग में जो इमेज बनी थी वो कुछ चीजों तक ही सीमित थी, जबकि चीजें उसके बियॉन्ड भी थी, उससे आगे भी जाकर के थी, तो आपने अपने दिमाग को सीमा में बांध दिया और वहीं आप गच्चा खा जाएंगे। और फिर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सही तरीके से आप ना तो उत्तर दे पाएंगे और न ही बायोडाइवर्सिटी के तहत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए इसका आप निर्धारण कर सकेंगे, क्योंकि सीमा ही जब छोटी है तो आपके जो निर्धारण होंगे टॉपिक वो भी कम होंगे, उसी सीमा के अंतर्गत होंगे। तो मित्रों, इसके माध्यम से मैंने आपको केवल पढ़ने की एक तकनीकी बताई है और मुझे लगता है कि इसे आपको उपयोग में लाना चाहिए, यह आपके बहुत ही ज्यादा फेवर में काम करेगा। देखिए जैव विविधता, आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा या इसका अर्थ क्या है। हम कहते हैं समस्त जैव मंडलों, समस्त जैव मंडलों। देखिए यह जैव विविधता, यह सिर्फ विविधता नहीं है, जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता। बायो है ना, बायोलॉजी है ना, हालांकि बॉटनी भी होता है तो वहां बॉ है, वहां वनस्पति है, लेकिन यह बायोलॉजी। लेकिन जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो क्या वनस्पतियों में जीवन नहीं है? वनस्पतियों में भी जीवन है। तो जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो जीवन होगा कहां? जैव मंडल में होगा, या यूं कह लीजिए कि जहां जीवन होगा उसे हम जैव मंडल मानेंगे, यह ज्यादा सही है कि जहां जीवन होगा वो जैव मंडल होगा। तो परिभाषा के दो शब्द शुरू हो जाएंगे, समस्त जैव मंडलों, ये पूरे के पूरे जैव मंडल होंगे, आपके और मेरे द्वारा निर्धारित नहीं, समस्त जैव मंडलों। तो उस समस्त जैव मंडलों में आप कह लीजिए कि ये धरती भी है और साथ ही साथ पानी भी है, और धरती का जो ऊपर का जो वातावरण है वह भी है, क्योंकि जो चिड़िया है वो तो हवा में उड़ रही है ना, आकाश में उड़ रही है, तो आकाश का वह भी हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है जहां जीवन की संभावनाएं हैं। तो समस्त जैव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों, जीवों में फिर दोनों आ जाएंगे, प्राणी एवं वनस्पति, इनकी विविधता, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी डाइवर्सिटी हमें दिखाई दे रही है, वो सब के सब इस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, राइट? तो जब हम कहते हैं विविधता, तो जैव तो आपके समझ में आ गया, तो जब हम कहते हैं विविधता तो इस विविधता का आप निर्धारण कैसे करेंगे? क्या केवल रंगों की विविधता, या रूप की विविधता, या गुणों की विविधता, या देखने की विविधता, लंबाई की विविधता, स्थान की विविधता, कैसे निर्धारित करेंगे विविधता कि विविधता का मतलब क्या है? तो जब हम विविधता पर विचार करते हैं तो हमें विविधता के तीन रूप दिखाई देते हैं, साइंटिफिक तरीके से तीन रूप। उसका जो पहला रूप है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जीन्स के कारण एक प्राणी जो दूसरे प्राणी से भिन्न होता है। इस रूप में आप कह सकते हैं कि मनुष्य, हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन आप देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में आप अलग अलग पढ़ते हैं ना कि ये इस प्रजाति का है, ये इस प्रजाति का है, ये आर्य प्रजाति का है, ये फलाने प्रजाति का है, तो वो एक अलग तरीके से उन्हें बांटा गया है। लेकिन जो जीन्स है वो तो हर व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न कर देते हैं। तो जो पहली जो भिन्नता का आधार होगा वह होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसे आप हिंदी में कहेंगे जननिक विविधता। तो ये सिंपल सी चीज नहीं है। हो सकता है कि देखने में दो चीजें एक जैसी दिखाई दे रही हों, लेकिन उनमें विविधता हो, और ये बहुत विचित्र किस्म की होती है। आपको ताज्जुब होगा, कभी कहीं मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो तरबूज होता है, उस तरबूज की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 1200 किस्म की हैं। 1200 किस्म के तरबूज होते हैं, आप कल्पना करके देखिए। और दिखने में ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर भी उनमें होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो एक जैसे दिखाई देते होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अभी तो संतरे आ रहे हैं, आप संतरे खा करके देखिए, तो थोड़े से देखने में अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से संतरे ऐसे होंगे जो देखने में तो एक है लेकिन उनका स्वाद अलग अलग है, और अगर स्वाद अलग अलग है तो डेफिनेटली उनमें जीन्स में फर्क है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो दूसरा है दोस्तों वो है स्पेसिस डाइवर्सिटी, यानी कि एक जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस एरिया में कितने प्रकार के प्राणी हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं। जैसे मान लीजिए एक जंगल को आप ले लीजिए, तो उस जंगल में कितने तरह के पेड़ हैं, कितनी तरह की वनस्पतियां हैं, घास फूस कितने हैं, कितने तरह के जीव हैं, तो उसको भी हम कहते हैं जैव विविधता। वो उस क्षेत्र की जैव विविधता है, और लगभग लगभग इस तरह के 18 लाख प्रजातियों का अभी तक अनुमान लगाया गया है, या यूं कह लीजिए कि आइडेंटिफाई कर ली गई, अनुमान नहीं कहना चाहिए, 18 लाख इस तरह की प्रजातियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और फिर तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, देखिए ये भी इसमें शामिल है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्योंकि जो जैव विविधता है वो इकोसिस्टम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दोनों सिस्टम आ जाते हैं, याद रखिए। पहला तो यह है कि नेचर ने अपने तरीके से बनाया हुआ है, घास के मैदान बना दिए हैं, जंगल बना दिए हैं, रेगिस्तान बना दिए हैं, पर्वत बना दिए हैं, नदियां हैं, झील हैं, समुद्र हैं, ये सब नेचर ने बनाया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ मनुष्य ने भी कुछ बना दिए हैं, मनुष्य निर्मित जंगल हो रहे हैं, मनुष्य ने झीलें बना दी हैं, है ना। आप देखिए कि हैदराबाद का, आप देखिए कि कितनी बड़ा महासागर ही हम कहते हैं, भोपाल में झील है वो मनुष्य के बनाया हुआ है। तो ये इकोसिस्टम है, तो चाहे वो नेचर ने बनाया हो या चाहे मनुष्य ने बनाया हो, ये जितनी भी प्राकृतिक स्थितियां हैं ये सब के सब इस बायोडाइवर्सिटी में आती है। तो देखिए इसके तीन रूप हो गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिस डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है, मैंने आपको विविधता के तीन रूप बताए हैं बायोडाइवर्सिटी के, आगे हम लोग फिर बात करेंगे। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।